उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति मेरी बहनों, आत्मज्ञान के अभिलाषियों और भक्तजनों, आप सबों का हृदय से वंदन करती हूं और वैदिक अभिनंदन नमस्ते से आपका स्वागत करती हूं। भारतीय संस्कृति में वैदिक धर्म को सब निखिल धर्मों का मूल माना है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। और मनुष्य के कर्तव्य का निर्णायक धर्म होता है और यह ज्ञान हमें धर्म से पता चलता है। वैदिक संस्कृति, अगर एक शब्द में आपसे कोई पूछे कि वैदिक संस्कृति को एक शब्द में उपसंहृत करके बताइए, तो उत्तर क्या होगा? यज्ञ। तो वैदिक संस्कृति जो है वो यज्ञ प्रधान संस्कृति है। पौर्णमास से लेकर अश्वमेघ पर्यंत यज्ञों का वितान इसका सूचक है। और इन सब यज्ञों को अगर आप उपसंहृत करें तो उनमें से सिमट कर पांच महायज्ञ निकलते हैं। वैसे समय और द्रव्य की दृष्टि से ये पांच महायज्ञ नहीं गिने जाएंगे, लेकिन तब तो आपको और अनेक जो आप करते हैं पारायण यज्ञ वगैरह, वो वृहद यज्ञ हैं, वो लंबे समय तक किए जाते हैं, कई दिनों तक भी होते हैं। लेकिन ये महायज्ञ जो हैं, ये इनको, इन पांच यज्ञों को महायज्ञ इसलिए कहा गया है कि इनके उद्देश्य जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो इन पांच यज्ञों को नित्य कर्म भी कहा गया है, क्योंकि हर परिवार को, हर व्यक्ति को, जितने जो पहले के तीन आश्रम हैं वहां इन तीन आश्रम के जो व्यक्ति हैं उनको करना चाहिए, तब जाके आपको अधिकार मिलता है सन्यास बनने का। पंचेतास्तु महायज्ञेन। प्रश्न ये होता है कि इन पांच यज्ञों में सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, उसमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्वाध्याय है, उपासना है और संध्या है। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम, अनेकों नाम है वो। उस असली में ये कम्युनिटी प्रेयर है, इसमें लोक का संग्रह जनहित का साधन है, जिसमें देव पूजा, दान और संगतिकरण इसका उद्देश्य है। तीसरा है बलि वैश्व देव यज्ञ। इसका क्या उद्देश्य है? निराभिमानता। जितनी बार आप प्रेयर करते हैं अपने जीवन में, दिन में, तो उतनी बार अहंकार को चोट पहुंचती है, अहंकार आपका कम होता है। तो ये बलि वैश्व देव यज्ञ जो है, इससे आपका जो अभिमान है, जो अहंकार है, उसको चोट पहुंचती है, इसलिए इसका उद्देश्य है निराभिमानता। चौथा है पितर यज्ञ। पितर यज्ञ में क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कृतज्ञता। जिसने आपका जीवन साधा है उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का उद्देश्य क्या है? सहृदयता। तो मेरा जो ये प्रवचन है, क्योंकि समय सीमित होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जितना अपॉइंट्स में आपके सामने मैसेज रख सकूं, मेरी कोशिश बड़ी सरल भाषा में होती है, बड़ी सहज तरीके से होती है, और मैं उसको रोचक बनाने की बड़ी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कोई अध्यात्म क्षेत्र की कोई विशिष्ट नहीं हूं। मैं यहाँ पे बड़े आत्मज्ञानी और पंडित और पुरोहित सब बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूं उनके लिए नहीं है, ये हमारी आम जनता के लिए है, मेरे जैसे जो लोग बैठे हुए हैं। तो मैसेज पहुंचनी चाहिए कि आर्य समाज है क्या। आर्य समाज के पास क्या है देने को? आर्य समाज के पास है वेद, आयुर्वेद और योग। ये त्रिवेणी का जो संगम है हमारे पास, ये हमें हर वर्ग तक पहुंचाना है। यह कृत संकल्प है और होना चाहिए हर आर्य समाज का। और वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सिद्धांत, इन सबों का प्रचार और प्रसार करना हमारा परम धर्म है। क्यों? ये एक वसीयत है जो हमारे पूर्वजों ने, संत सन्यासी महात्मा धर्माचार्य दार्शनिकों ने हमें दी है, तो हम उसको वेस्ट कर दें? तो ये वसीयत जो हमें मिली हुई है उनके प्रयास से, उसको हमें श्रम करते हुए अपने अपने आश्रमों में हमें उसका प्रचार और प्रसार करना है। लेकिन युवा पीढ़ी की कमी जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। किस तरह से हम उनको आकर्षित करें? कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसकी चर्चा सुबह हम भ्राता जी के निवास में कर रहे थे। चौथा, हमारे यहां उपदेशकों की कमी है, क्योंकि सारा जो मैसेज है, आर्य समाज का जो विचारधारा है, उसको पहुंचाने के लिए हमें प्रवक्ताओं की जरूरत है। और प्रवक्ता वही बन सकता है जो स्वयं अध्ययन स्वाध्याय करता हो, सब नहीं बन सकते। तो प्रवक्ताओं की कमी है, युवाओं की कमी है, प्रमाद और आलस्य इतना है कि जो बुराइयों का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है, लेकिन अच्छाई का प्रचार करने वाले लोग प्रमाद माने इर्रेस्पॉन्सिबल और आलस में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि वैदिक धर्म जो है उसका प्रचार बहुत मंद गति से चल रहा है। और मैं चाहती हूं कि हम हमेशा युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आप महिलाओं को भी जोड़िए, उन्हें भी कोई ऐसे ऐसे कार्य दीजिए। खाली संगीत से सब कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो कि मिलकर कर सकती हैं हम, और आपके सपनों को साकार हम भी कर पाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप जितने भी उपदेष्टा हमारे हुए हैं, जितने बड़े बड़े वक्ता हुए हैं, योगी, सन्यासी, धर्माचार्य, दार्शनिक, उन सबों का एक ही उद्देश्य रहा है, जिन किसी के भी आप व्याख्यान सुने, प्रवचन सुने, अंत में उनका एक ही मार्गदर्शन जो वो दिखाना चाहते हैं, जो दिखाया है, वो क्या है कि हे मनुष्य, तू स्वार्थ रथ गड्ढे में गिरा हुआ है, उस गड्ढे से निकल और उस आत्मा को याद कर जिसको तूने भुला दिया है, और उस ईश्वर के की उपासना कर जिसके बिना तेरे जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती है। तो यही असली में निचोड़ है हर एक प्रवचन का, क्योंकि वैदिक धर्म जो है वो त्रैतवाद पर विश्वास करता है, त्रैतवाद पर आधारित है। और त्रैतवाद का मतलब क्या है कि तीन अनादि सत्ताएं हैं, एक ईश्वर है, एक परम, एक आत्मा है और एक प्रकृति है। इन अलग अलग सत्ताएं हैं, ये एक दूसरे से कोई अलग किसी से मिला हुआ नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक सत्य है जो कि प्रकृति है, सत और चित्त है वो आत्मा है, और सत चित्त आनंद जो है वो परमात्मा है। आत्मबोध, आत्मबोध जानने के पहले ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान का अर्थ होता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किसने भेजा है, कहां जाना है और क्या करना है, ये संसार क्या है, किसने बनाया है, ये सारे जब प्रश्न आपके अंदर उठने लगते हैं तो ये आत्मज्ञान की कैटेगरी में ही आता है। अध्यात्मवाद का अर्थ होता है स्पिरिचुअलिज्म और भौतिकवाद का अर्थ होता है मेटीरियलिज्म। तो आत्मज्ञान जहां अज्ञान का आभास होने लगता है कि मैं अज्ञानी हूं, डिनायल में नहीं है आप, वहां इसे ज्ञान शुरू हो जाता है। तो मैं कहना यह चाह रही थी आपसे कि जहां आपने ये जान लिया कि आप आस्तिक हो गए, टू रियली लर्न अबाउट द सोल, अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, आपको पहले तो आस्तिक होना पड़ेगा। आस्तिक का अर्थ होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और नास्तिक का अर्थ होता है मैं शरीर हूं और मैं आत्मा नहीं। आत्मबोध की जरूरत क्या है? इसलिए उसकी जरूरत है क्योंकि आत्मबोध से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ होता है कि हमारा जो मन है उसमें इतने विकार भरे हुए हैं जिनको कि हम छह दुर्गुण बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, लेकिन मैंने उसमें एक ऐसा भयंकर अवगुण और जोड़ दिया है जो कि और भी मतलब हिला देने लायक है, वो है भावनात्मक निष्कृष्टता, नियत। सारे आप अवगुणों को हटा लो लेकिन अगर आपकी नियत अच्छी नहीं होगी तो आप क्या नाम है कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? जीवन का अर्थ और उद्देश्य को जानना होगा, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ उसको ढूंढना पड़ेगा, जरूरी है। भले ही उसको कुछ मिले या ना मिले, उसके मन चाहो उसको न मिले अपने जीवन में, और पूर्ण भी न हो, लेकिन कोशिश करने से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। यह निर्भर करता है मनुष्य के दृष्टिकोण पर और दृष्टि पर। मैंने जब खुद में ही चंद कमियां ढूंढनी, मैंने जब खुद में ही चंद कमियां ढूंढ ली, मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने खुशियां ढूंढ ली। दूर तक कांटे बिछे थे जिंदगी की राह में, ढूंढने वालों ने उनमें फिर भी कलियां ढूंढ ली। एक दिन एक पल को वो मेरे ही अंदर मिल गया, उन छोटे से लम्हों में मैंने सदियां ढूंढ ली। जब मुझे मेरी ही जिंदगी देन पाई खुशियां, तो मैंने उनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ ली। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। इसलिए आत्मबोध से अंतःकरण की शुद्धि होती है जिसने जीवन का अर्थ और उद्देश्य जानने की कोशिश की हो। और जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता है तब तक ये आतंकवाद, बेईमानी, चोरी, डकैती, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार खत्म नहीं हो सकता है। भौतिकवादी कहते हैं संसार का अर्थ क्या होता है? सरकने वाला। भौतिकवादी कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं और संसार ऊपर की तरफ सरक रहा है, लेकिन मानती हूं कि इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए भौतिकवाद की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इस आत्मा के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। भौतिकवाद जरूरी है, और वो क्या कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बस हो जाए तो सब सुखी हो जाएंगे। अरे रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाने से ही आदमी खुश होता, तो ये जो जेल में लोग बैठे हुए हैं इनको रोटी भी मिल रही है, इनको पहनने को कपड़ा भी मिलता है, रहने को स्थान भी मिला हुआ, तो ये क्यों इतने आतुर हैं भाई, सलाखों से बाहर निकलने के लिए, उससे यह समझ में आता है कि स्थूल शरीर के अलावा इस शरीर के अंदर एक और तत्व है जिसका नाम है आत्मा। तो जिस तरह की आप शरीर की जरूरतें पूरी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आप सजते हैं और सुंदर लगने के लिए आभूषण लगाते हैं, उसी तरह आत्मा की भी भूख है और आत्मा का भी आकर्षण है, उसको भी हमें आकर्षित बनाना होगा। वो कैसे हो सकता है? आत्मा की भूख कैसे मिटाओगे? आत्मा की भूख मिटाओगे आप भक्ति से, स्तुति प्रार्थना उपासना से, और उसको कैसे सजाओगे? शुद्ध आचरण से। तो प्रश्न ये उठता है, शरीर की भी जरूरतें पूरी करनी है और हमें अपनी आत्मा की भी जरूरतें पूरी करनी है, क्योंकि शरीर का मालिक ही तो आत्मा है। अब जो शरीर और शरीर मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? वासना उत्पन्न होती है। जब दो मन मिलते हैं तो कामना उत्पन्न होती है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो प्रेम उत्पन्न होता है। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो आनंद उत्पन्न होता है। तो हमने जान लिया कि आनंद का भंडार परमात्मा है। तो आनंद का सोपान क्या है? परमात्मा है। आत्मबोध है, सेवा है, संयम, साधना, सत्संग, संस्कार, ज्ञान, वैराग्य, ये जितने आदर्श हैं जीवन के, ये सब आनंद देने लायक हैं। यहीं से आनंद का प्रारंभ होता है। और मनुष्य को आत्मबोध के लिए सिर्फ इन आदर्शों की ही जरूरत है, ऐसा नहीं है। क्यों? कि बहुत ज्ञानी हैं, लोगों को सारे वेद भी रटे हुए हैं, उपनिषद के विद्वान बने हुए हैं, लेकिन बैठ के वो नोक झोंक करते ही रहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वेदों में उक्त शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रति लगन नहीं होती है। तो जब तक ईश्वर के प्रति लगन नहीं होती, वो उक्त शास्त्र जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? किंतु, परंतु, अगर, मगर, वो तो, लो, यूं ही करते रहते हैं। तो जब तक इन चीजों को आप कचरे के डब्बे में नहीं फेंक दोगे, तब तक आत्मबोध आपको नहीं होगा। अब ये आत्मा दूर तो है नहीं, आपके अंदर ही विराजमान है ये आत्मा। और इस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने, हमारे संतों ने अपने दिनों दिन, महीनों संध्या करते थे, ध्यान करते थे। क्यों? खाली मत्था टेकने से आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं क्या? असंभव है। तो उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए और यज्ञ वेदी के अराउंड उन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म के लिए, उन शहीदों के लिए, और जिन्होंने त्याग दिया अपना तन, मन और धन। उस मौत को दुनिया प्यार करती है, क्योंकि वो हकीकत के लिए उन्होंने जान दी थी। ए दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी, जहां दे दी तलाशे हक के लिए फिर और इबादत क्या होगी। यूं तो हर रात की तारीखी देती है प्याम उजाले का, उससे जहां पुर नूर हुआ उस रात की कीमत क्या होगी। खंजर भी चलाए अपनों ने, जहरें भी पिलाए अपनों ने, अपनों के ऐसा कम है क्या, औरों से शिकायत क्या होगी। औरों के लिए मरने वाले मर कर भी अमर हो जाते हैं, जिस मौत से दुनिया प्यार करे उस मौत की कीमत क्या होगी। सदियों की खिंचा के बाद खिला एक फूल उसे भी तोड़ लिया, कलियों की हिफाजत जिससे नहीं हो सी फूलों की हिफाजत क्या होगी। इस हिम्मत जुर्रत के सदगे इस जज्बा शाजिद पे कुर्बान, हक की खातिर मरने वाले बातिल से बगावत क्या होगी। तो हकीकत जो सत्य है, प्रेम है, वो ही धर्म है, वही मनुष्य को इंसान बनाता है। हमें चाहिए आर्य समाजियों को तम के मंदिर, भ्रम के मंदिर, रम के मंदिर, गम के मंदिरों को दूर करें। सूरज चंदा के वंशज हैं हम, सूरज चंदा के वंशज हैं हम, तम के मंदिर बंद करो, खुशियों के हम खानदान हैं, गम के मंदिर बंद करो, पाखंडों ने खूब छला है, भ्रम के मंदिर बंद करो, हर घर ओम का मंदिर होगा, रम के मंदिर बंद करो। तो हमें चाहिए कि जो कुछ हम देखते हैं, आपकी कितनी सहेलियां होंगी, आपके कितने मित्र होंगे जो पौराणिक भाई और बहन हैं, उनसे आप ये मत कहिए कि तू विष्णु की, गणेश की, इसकी उसकी पूजा मत कर। लेकिन अपना जो मैसेज है, जरूरी नहीं है कि आप यहां पर आए और तभी आपको पंडित जी बैठ के आपको सिखाएं, लेकिन आप आपस में अब आप खुद पंडिता हो सकती हैं, आप खुद पंडित बन सकते हैं। अपनी विचारधारा जो है, जो आप सीख के जाते हैं, कहते हैं ये सत्संग जहां होता है, जहां प्रार्थनाएं होती हैं वो योग है, लेकिन जहां आप कार्य करते हैं वो क्या है? प्रयोग है। गीता योग है तो रामायण प्रयोग है। तो हमें चाहिए जहां बैठिए, जहां भी किसी भी तरह का आप कार्य करिए, आपकी सहेलियां होंगी, घर है, आप आपस में आती जाती होंगी, हर जगह आप कम से कम, अभी मैं कहती हूं धर्म की बातें करिए। मैं करती हूं, मैं जाती हूं ऑपरेशन थिएटर में, तो मेरे को नर्स सेन मेरी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भाई? क्यों? कि मैं ऑपरेशन रूम थिएटर में, 3 घंटे का ऑपरेशन हो रहा है, 4 घंटे का हो रहा है, लेकिन उस समय भी मैं धार्मिकता की ही बातें करती हूं। बड़ा अच्छा लगता है उनको, समय भी अच्छा बीत जाता है और कार्य भी खत्म हो रहा है। ये मेरी आजीविका का साधन जरूर है, लेकिन इसको मैंने अध्यात्म से जोड़ा हुआ है। अगर मैं इसको अध्यात्म से न जोड़ूं तो मैं तो पागल हो जाऊं, क्योंकि वातावरण कुछ ऐसा दूषित है, इतना विषाक्त है कि यहां पर जो वासना के भूखे भेड़िए हैं हर जगह आपको दिखाई देंगे, जो आपके शील भंग करने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना अस्तित्व, आर्य समाज का अगर अस्तित्व, धर्म का अस्तित्व अगर आपको बचाए रखना है, तो वैदिक विचारधारा के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो आपने यहां पर इतने श्रद्धानंद, ब्रजानंद सबके यहां पर पिक्चर लगाए हुए हैं, लेकिन कभी इनके सामने खड़े होकर सोचिए कि इन्होंने कितना त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया अपना, लेकिन हम क्या आनंद पा सकते हैं? आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, अनमोल जन्म हीरा धूली मिलाने वाले, बचपन जवानी खोकर बीता बुढ़ा परोकर, इन 3 अवस्थाओं की पूंजी हिलाने वाले। नो, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ रहा है। कहते हैं ना, ये दुनिया सराए अफानी देखी, इस जिंदगी में सब चीज आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा भी देखा, जो जाके न आए वो जवानी भी देखी। तो क्या रह गया है हमारे पास? ये जो अवधि हमें मिली है 60 साल की, 40 साल की, 70 साल की, लेकिन हमारी जो पारमार्थिक आयु है वो कितनी है? आप सब अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपकी असली उम्र क्या है। एक वृद्ध बगीचे में कुछ काम कर रहा था, तो वहां से राजा विक्रमादित्य आए और पूछने लगे कि आपकी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरी उम्र 5 साल की है। तो बोले, अरे झूठ बोलते हो, मजाक करते हो। तो तो उन्होंने कहा कि मैं 75 साल का तो हूं, लेकिन 70 साल मैंने सांसारिकता में बिता दिए, सारी भोग सामग्री इकट्ठा करने में मैं लगा रहा, अपना सारा समय मैंने अपने परिवार में बिता दिया, लेकिन कभी प्रभु का जो काम है वो मैंने नहीं किया। 5 साल से मैं इसी में लगा हुआ हूं, तो मेरा जो वहां पे इन द किंगडम ऑफ गॉड वहां पर जो शासन हो रहा है वहां पर ये 5 साल की आयु ही गिनी जाएगी, जिसे कहते हैं पारमार्थिक आयु। मैं एक किताब पढ़ रही थी, शास्त्र की ही थी, तो वहां पर मैंने पढ़ा कि अगर तुम 50 साल के हो तो समझ लो तुम 25 साल आपके पास बाकी हैं। मैं तो बड़ी घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। मतलब कहने का यह है, अगर आपके पास समझ लो आपने कोई प्लान बनाया है, मैं घर खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और आप सोचते हैं कि मैं 20 साल और जिंदा रहूंगा, अरे भाई गलत हिसाब लगा रहे हो। 20 साल नहीं, उसका आधा कर दो, 10 साल आपके पास बाकी हैं। क्यों? कि ज्यादा समय सोने में, खाने में, पीने में, निंदा करने में, शॉपिंग करने में, पार्टियों में जाने में बिता देते हो, उसका तो अकाउंट लिखते ही नहीं हो। तो असली में जो समय हमारे पास है उसकी अवधि बहुत कम है, इसलिए हर पल पल जो है हमें ईश्वर का ध्यान करते हुए उसका कार्य करना चाहिए, और आर्य समाज के पास जो त्रिवेणी संगम है उसका कृत संकल्प करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैं वास्तव में दिल से कहती हूं कि ह्यूस्टन आर्य समाज ही शायद मेरी निगाह में, मैं तो जैसे फिर बार बार कहूंगी, मैं तो किसी आर्य समाज के कुछ हूं नहीं, लेकिन जितना मैं, हां एक मैं बहुत कहूंगी, इतने महान पिता की बेटी जरूर हूं, उनके बारे में कहना चाहूंगी कि उनके कुछ छींटे जरूर पड़ी हैं कि आज मैं इधर बैठ के दो शब्द कह पा रही हूं। उनके बारे में कहूं तो मैं अपनी पंक्तियों में कह सकती हूं, बाधाएं कब बांध सकी हैं, आगे बढ़ने वाले को विपदाएं कब मार सकी हैं, मरकर जीने वाले को। धूप में कितनी तपन है, धूप में कितनी तपन है, धूप में कितनी तपन है, दीप में कितनी जलन है, ये बताएंगे तुम्हें वो जिंदगी जिसकी हवन है। फूल में कितनी छुअन है, शूल में कितनी चुभन है, ये बताएंगे जिन्होंने खून से सींचा चमन है। तो ये जिंदगी थी मेरे पिता की। तो उन्होंने, वो जब कभी स्वामी दयानंद का फोटो भी देखते थे उनकी अश्रुधारा पहले नचती थी, कहते थे इस इंसान ने क्या करके दिखा दिया, हमारे सामने धर्म को फिर लाके रख दिया। वेदत्रयी कहलाते थे, शंकराचार्य प्रस्थानत्रयी कहलाते थे, क्योंकि वो भी उन वेद की पुस्तकों को नहीं ला, उनके पास चाबी नहीं थी, लेकिन स्वामी दयानंद थे जिन्होंने वेद की पुस्तक, जो भारत के साहित्य में सबसे नीचे, संस्कृत के साहित्य में सबसे नीचे पड़ी हुई थी, उनको ऊपर किया और संसार के सामने लाकर रखा कि वेद ही प्रमाणिक ग्रंथ है। लेकिन ये कार्य मध्यकालीन के शंकराचार्य, माध्वाचार्य, निम्बकाचार्य कोई नहीं कर पाया, इसलिए उनको क्या कहते हैं, प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उन्होंने वेदांत को, गीता को और उपनिषद को धर्म का आधार बनाया, लेकिन स्वामी दयानंद ने वेदों को धर्म का, जीवन का आधार बनाया, इसलिए उनको वेदत्रयी कहते हैं। तो मैं समझती हूं कि जितने शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने तन मन सब कुछ न्योछावर कर दिया है, उनके चित्र की तरफ हम देखें, उनसे ही हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए। और मैं समझती हूं उनके सामने हम नतमस्तक तो हो सकते हैं, उनकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नतमस्तक हो सकते हैं। पूजा का अर्थ भी होता है पूर्ण तरीके से किसी को जान लिया, वही पूजा है, और दूसरा अर्थ होता है सेवा। अगर ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो हमें व्यक्तियों की सेवा करनी होगी, सब प्राण, सजीव प्राणियों की हमें सेवा करनी होगी, जो उड़ रहे हैं, जो तैर रहे हैं और जो धरती पर हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आर्य समाज का जो ज्ञान है इतना विस्तृत है, इतनी गहराई में है कि हम तो उसकी एक बूंद तक नहीं है, और उस सागर में रहकर हम एक एक बूंद भी अगर बन जाएं तो मैं समझती हूं कि संसार का उद्धार हम कर सकते हैं। लेकिन आज की हालत बहुत नाजुक है। नाजुक इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप सागर में, सुबह में कह रही थी एक चम्मच चीनी का डाल देंगे तो वो मीठा मीठा नहीं हो सकता है। आज हमारे पास ऑक्सीजन तक की कमी है, मतलब प्रेरणा की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, परमार्थ की कमी है और सामर्थ्य की कमी है। कारण उसका यही है, प्रमाद और आलस्य और कुछ नहीं है। तो इस अमेरिका की नगरी में रहकर भी हमारा पूरा ये कर्तव्य बनता है कि आर्य समाज की स्थापना तो हुई है लेकिन आर्य समाज का निर्माण नहीं हुआ है। और आर्य समाज की स्थापना के लिए सबसे प्रथम जरूरत क्या, किस चीज की है? विचारों की। आर्य समाज कोई भी संस्था हो उसका जन्म होता है उत्तम विचारों से और वो स्थिर रहता है आचरण से और उसका प्रचार होता है प्रवक्ताओं से, प्रवचन से। सो प्रवचन से प्रचार होता है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं हमें आर्य समाज का अस्तित्व अगर निभा कर रखना है। मैं स्वयं क्या कर रही हूं, बहुत बहुत कम कर पा रही हूं, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि जो कोई भी मुझे बुलाता है, हजारों में बोली हूं मैं, लेकिन मैंने कभी आर्य समाज के संप्रदाय से मैं आ रही हूं ये मैं नहीं कहती हूं। लेकिन जैसे ही वो सुनते हैं बातों को, स्वयं कहते हैं क्या आप आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं? मैं कहती हूं बड़े गर्व से, जी हां, वैदिक धर्म से मैं जुड़ी हुई हूं। तो प्रश्न ये उठता है कि दोबारा जाती हूं उस जगह तो और ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं। तो आपस में जब आप सत्संग में बैठते हैं वही एक माध्यम है और सत्संग का माध्यम जो है उसको आप एकदम त्यागिए मत। सत्संग अपने घर घरों में करिए बहन जी, घर में आप करेंगी तो इसके अलावा अगर आप यहां नहीं आ सकती हैं तो घर घर में सत्संग करिए, वैदिक सत्संग करिए। और कुछ ना कुछ आप हवन तो करना जानती ही होंगी, न भी करना जानती हो तो किताबों से आप करिए, लेकिन सत्संग का माध्यम, हवन का माध्यम जरूरी है लेकिन सबसे उत्तम है प्रवचन। वैदिक विचारधारा जो है उसको आगे बढ़ाने का जो माध्यम है उसको हमें अपनाना होगा और उसके बिना हमारा जो जीवन है, हमारा जो आर्य समाज जो हम कहते हैं वो एकदम व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वैदिक धर्म न कोई मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न मजहब है, न व्यक्ति विशेष है। वैदिक आर्य समाज जो है, वैदिक धर्म जो है, एक आंदोलन है। और वो आंदोलन किस लिए है कि हमारे संसार जो है जिसमें जितनी कुरीतियां हैं, जितनी ऊंच नीच जात पात, जितना शोषण हो रहा है, जिसके नारी उत्पीड़न हो रहा है, इन सबों को मिटाने का एक हमारा संकल्प है, वही आर्य समाज है। नहीं तो सिर्फ हम कह दें कि हम आर्य समाजी हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। पहले हम आर्य बनेंगे तब हम दुनिया को आर्य बना पाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि आप, पहले मैंने कहा आत्मा क्या, आत्मज्ञान क्या है, फिर मैंने कहा आत्मबोध की जरूरत है, अब मैं कहना चाहती हूं दो मिनट में कि आत्मा के दर्शन कैसे होते हैं। मुंडोक उपनिषद में एक छोटा सा बहुत सुंदर मंत्र है, वो कहता सत्येन लभ्यस तपसा वेश आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्य अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रोयं पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः। तो जिस किसी को भी आत्मदर्शन करने हैं यानी ईश्वर का दर्शन करना है, चार उपाय बताए हैं और वो उपाय ये है सत्य, सत्येन लभ्यस तपसा, सत्य तप, सम्यक ज्ञान, ब्रह्मचर्य। ये चार साधन बताए हैं हमारे वेदों में कि आत्मदर्शन आप इन उपायों से कर सकते हैं। लेकिन फिर अंत में क्या कहते हैं, अंतः शरीरे, इस शरीर के अंदर जो ज्योति है आत्मा की उसके दर्शन करने के लिए ये चार उपाय तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषाः। लेकिन आपका मन अगर विकृत है, उसमें विकारों से भरा हुआ है, तो आप सत्य और तप सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। तो इसलिए वहीं हम लौट के आ जाते हैं उसी केंद्र बिंदु पर कि हमें अंतःकरण की शुद्धि पहले करनी होगी आत्मबोध से, तब जाके हमें आत्मज्ञान होगा, आत्मा का लाभ होगा और हम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। उसके बिना आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। कहते हैं ना, मन को एकाग्र करने के लिए हमें मन को ध्यान करना पड़ेगा, तब मन एकाग्र होता है, चित्त भी एकाग्र होता है। किसी ने कहा कि यज्ञ आप करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ के प्राण क्या हैं और यज्ञ का सार क्या है। कोई भी खड़ा होकर मुझे इसका जवाब दे। इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप में आप इस अग्नि को देख रहे हैं, लेकिन असली में इसको करने का उद्देश्य यही है कि इस प्रत्यक्ष अग्नि के सामने उसकी वेदवाणी का उच्चारण करते हुए हमारे मन में उस हम अप्रत्यक्ष भाव की पुष्टि कर रहे हैं जो कि परमपिता परमात्मा है। इस यज्ञ की आत्मा है स्वाहा। स्वीकृति, सु इच्छा से आप स्वीकार करते हैं कि मनसा वचन मन से मेरे विचार शुद्ध हैं, सत्य हैं और वाणी से भी शुद्ध और मिठास है और कर्म से भी मैं सत्य कर रहा हूं। हे प्रभु, मनसा वाचिका कर्माह, तो इसकी इसका जो आत्मा है इस यज्ञ की वो है स्वाहा। फिर दूसरा शब्द आप बार बार क्या बोलते हैं, इदं मम, वो उसका प्राण है। तो यज्ञ का प्राण है इदं मम, कि मेरा कुछ नहीं प्रभु इस संसार में, सब कुछ तेरा है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय प्रथम मंत्र कहता है ईशावास्यमिदगम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेरे त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सिद्धनम, के कुछ भी मेरा नहीं है, सब जगह तो तू व्यापक है, लेकिन जो पदार्थ मुझे मिले हुए हैं परित्याग की भावना से उसको उपयोग करते हुए मनुष्य जो है उसका पात्र बन जाता है। तीसरा सार क्या है, सुगंध। सुगंध जो फैलती है इससे, लोग कहते हैं घी बर्बाद करते हैं आर्य समाज। अरे कहां, कोई चीज बर्बाद नहीं होती है, घी हम कहां बर्बाद कर रहे हैं। घी में क्या शक्ति है फिर बताइए, घी में भेदक शक्ति है, पेनिट्रेटिंग पावर है। जो अगर आप ऐसे ही डाल दो सामग्री, देखना कितना धुआं आएगा, लेकिन जब आप घी में मिलाकर डालते हैं तो उसकी जो भेदक शक्ति जो है इतनी, जैसे 10% अगर उसमें सुगंध है वो हजारों गुना बढ़ जाती है। अगर कोई आपका दुश्मन भी पड़ोसी होगा उसके घर भी चली जाएगी। तो यज्ञ का की आत्मा जो है स्वाह है और यज्ञ का प्राण इदं मम है और यज्ञ का सार जो है वो ये सुगंध है। ये हमें जानना चाहिए कि हम जब यज्ञ करते हैं तो खाली पंडित कह रहा है आप उसमें डालते चलो, क्यों? जिस तन्मयता से, जिस आत्मीयता से, जिस सच्चाई से, जिस निष्ठा से आप स्वाहा मतलब इसमें ओब्लेशंस, इसमें आहुति डालेंगे, उतनी ही ये सारी जो आपकी आहुतियां हैं, ये आहुतियां आपके चित्त में अंकित हो जाती हैं कि जिस भावना से आपने इसको डाला है। और चित्त इज लाइक ए ब्लैक बॉक्स इन द प्लेन विच इज लाइक ए मेमोरी बॉक्स। सारा खत्म हो जाए हवाई जहाज, लेकिन ब्लैक बॉक्स ढूंढते फिरते हैं लोग बाहर, क्योंकि उसमें सब चीज अंकित हो जाती है। उसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जिस प्रकार हम करते हैं, जिस तरह करते हैं, जितना करते हैं और नहीं भी करते हैं, वो सारी चीजें हमारे चित्त में अंकित हो जाती हैं। और जब आत्मा यहां से प्रस्थान करता है शरीर से, तो उसके संग ये सूक्ष्म जो तत्व है चित्त, उसके संग जाता है और उस पर निर्भर करता है कि हमारी अगली योनि क्या होगी। इसलिए हे मनुष्य, तूने इस जन्म में प्रभु को याद नहीं किया तो परलोक की क्या बात करता है। कहते हैं ना, यह चेद वेदी दद सत्यमस्ति नो चेदी हा वेदी न महंति विनिष्ठ भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रत्येष्मा लोकादमृता भवन्ति। और वो भी वही है जो कि हमारा कंट्रोल करते, एको वसी सर्वभूतांतरात्म एक रूपम बहुदाय करोति तमातमस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। अभी पंडित जी कह रहे थे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष गुमसमा एवं तो है नान्य तेतो अस्ति कर्म लिप्यते नरे, के कर्म करते चले जाओ, तुम्हें 100 साल जीने की तुमको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन 100 साल की जिंदगी कर्म करते हुए, लेकिन कर्म से लिप्त मत हो। और आखिरी दो दोहों से समाप्त करती हूं, मेरा समय हो रहा है, कि तप, पहले मैंने कहा सत्य तप, तप कौन, तपस्वी कौन होता है, जिसने क्या नाम है भगवा वस्त्र धारण कर लिए हो, खड़ाऊं पहन लिए हो, के सिर मुड़वा लिया हो, के लंबे बाल कर लिए हो, और जो हठयोग करता हो, नहीं। तपस्वी वो होता है जिसने द्वंद परिस्थितियों से जो प्रभावित नहीं होता अपने जीवन में। हमारे जीवन में दुख है, सुख है, यश है, अपयश है, लाभ है, हानि है, फूल है, कांटे हैं, इस द्वंद परिस्थितियों में भले वो कितना धनी क्यों ना हो, कितना निर्धन क्यों ना हो, कितना पढ़ा हुआ क्यों ना हो, कितना अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं किसी न किसी प्रकार के। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा है, चलती चलती चाकी क्या है, है? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोए। के ये दो पाटन जो है चक्की के, इसमें चावल पिसते चले जाते हैं और रोता है कि ऐसी हमारी हालत है कि इन द्वंद परिस्थितियों में हम सब पिस रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर किसने दिया फिर बताओ भाई, कोई यहां बैठा है विद्वान? चलो, कबीर के बेटे का नाम क्या था? आप, मैं हमेशा $10 देती हूं, कोई मेरा जवाब दे, नहीं दिया नहीं मिलेंगे। तो कबीर के बेटे का नाम था कमाल। तो जब उसने पिता का सुना ये, और उसने कहा पिताजी ये सत्य नहीं है, तो वो बोलता है चलती, उत्तर देता है चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठटाए। वो तो हंसता है, जो कीलन पासे बचे वाकी पिसे बलाए। जो कील के पास जो चावल के दाने रह जाते हैं वो नहीं पिसते। तो कहता है कमाल के पिताजी, जो अगर हम ईश्वर रूप की जो ईश्वर का हाथ पकड़े रहेंगे तो हम नहीं पिसेंगे, मतलब ये है कि हम प्रभावित नहीं होंगे, हम में समरसता रहेगी। तो इस तरह जो इंसान इन द्वंद परिस्थितियों में भी समरस रहता है, प्रभावित नहीं होता है, वही तपस्वी कहलाता है। मैंने आपका समय लिया, आदत है ना उसके पकड़ने की, तो देख रही हूं। तो लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, या अधिक कह गई हो, न्यूनता रह गई हो, मैं आपसे माफी चाहूंगी। लेकिन मैं दिल से कहना चाहती हूं कि मुझे जो प्यार मिला है और जो आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया है, मुझे आमंत्रित किया, यही बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन सारा अभी भी मैं भ्राता जी की आभारी रहूंगी कि उन्होंने मेरे एक और भाई बन गए, मेरे 5 भाई हैं, ये 6वें भाई हैं। मिलना तो मन का होता है, तन की क्या दरकार बटोई, भले ही मैं सालों न मिलूं, लेकिन मेरे दिल में आपने जगह कर ली है। और इस पूरे ह्यूस्टन आर्य समाज को मैं अपनी शुभकामनाएं देकर जाती हूं। और याद रखिएगा कि आप मुझसे कभी मिले थे और फिर मिलते रहेंगे अगर अवसर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आपका बहुत 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 शुक्रिया। दो तीन चीजें जो आज नोटेबल लगी मुझे, वो ये कि वैदिक धर्म एक आंदोलन है और घर घर में सत्संग, और नहीं तो कम से कम यहाँ हर रविवार को आए ताकि अपनी और आने वाली पीढ़ियों का भला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देव महाजन जी को इन्वाइट करना चाहती हूँ कि डॉक्टर देव बाला रामनाथन का वो सत्कार कर सकें। दो शब्द बोले।